ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾ ਦੇਈਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਈਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 17 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੰਜ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੋਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੋਜ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਹੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਉਸਨੇ ਸੈਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੜੇ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो मैं उस मित्र नो कहा संत बन के ही पता चलता है संत के नो कहते हैं। कल एक माता मैनु कह लगी गए से एक संत को और मेरी नूह के सारे गहने उतरवा लाए हार उतरवा लिया कहने मैं तो जाके फिर लड़ी तो लैके आई हाँ जबरदस्ती। तो उसने संत ने दलील की दी इथे जब आईदा है तो जितना गहना पाया होवे इथे छोड़ के जाईदा है जेब विच जितना धन होवे इथे ही छोड़ के जाईदा है। ये हुण लुटेरे बैठे ने कि संत बैठे ने और जिसने सारा गहना उतार दिता दसे पई सारयां दे सामने मैनू शुगल जी ने बड़ी मुश्किल नाल तोरिया गले दे हार कहिंदे ने वह भी उतार दिते चूड़ियां उतार दित्तियां अंगूठियां उतार दित्तियां जेब दे च 5200 रुपए सन वह भी दे देते। कि संत कहण लगा हुण तैनू ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा जा इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिलता हुंदा है संतां दे कोलों। मैं कतई संत दा निंदक नहीं मेरा रोम रोम संत दी खोज करदा है मेरा रोम रोम संत दे तोड़दा इशनान करन नूं राजी है और मैं उन्हां दे चरणां दी खाक लोचदा और संत नहीं ने मैं ऐसा भी नहीं कह रहा ऐसा भी नहीं कह रहा पर जणा खणा संत नहीं है। ते संत नूं किवें पहचाणोगे एक पंक्ति चेते रखना एवड ऊंचा होवे कोए किस ऊंचे को जाने ईश्वर नूं भी कदों समझोगे परमात्मा नूं कदों समझोगे पहले जिहड़ा समझना होवेगा वह अनुभव नहीं होवेगा। जिस दिन ईश्वर वर्गे हो जावांगे उदों पता चलेगा लै ईश्वर की है। ते तुसी आखोगे असी ईश्वर वर्गे हो सकदे आ असी उसदी अंश हां कि जे सूरज दे च रोशनी है ते किरण दे च क्यों नहीं रोशनी होवेगी सागर दे च पानी है तो लहर भी ते पानी है सिर्फ पता नहीं है उसनूं। जिस दिन पता चलदा है मैं उसदी लहर हां जो निर्वैर है निर्भय है समदृष्ट है प्रेम दा सागर है दया दी मूर्ति है कि जैसे उसके ज्ञान नु गांदा है गुणा नु गांदा है ये स्वभाव उसनों प्राप्त हो जाता है ईश्वर का स्वभाव उसनों प्राप्त हो जाता है। तो जिस दिन स्वभाव उसनों प्राप्त हो जाता है फिर कहना पैंदा हर का भगत सो हर ही जया वो ते हरि वर्गा हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही। संत नो संत पहचानेगा तो मैं उस गुरमुख प्यारे नो कहा तू संत बनन दी कोशिश कर फिर तेनू समझ आ जाएगी देव दृष्टि के देखो फिर तेनू समझ आ जाएगी संत के फिर तू ठगा तो ठगाएगा नहीं फिर तू संत दा सही मायने च पुजारी बन जाएगा तू सदके जाएगा उस तो कुर्बान जाएगा। लेकिन इस तो पहले तू समझ जाए किसे संत नो मैनू उम्मीद ते नहीं। अद्धा पंजाब ते मड़ियां दा पुजारी हो गया कबरां दा पुजारी हो गया कितने समझे। मैं फिर अर्ज करा जो बाणी नाल नहीं जुड़िया अपने बाणे नाल गुरु दे देते बाणे नाल नहीं जुड़ सकता जो गुरु ग्रंथ नाल नहीं जुड़िया पंथ नाल नहीं जुड़ सकता ते बाणी ते हुण तर्क करन वाले बथेरे जिन्हां नूं असीं बुद्धिजीवी कहिंदे आ तो किस तरह बाणा सुरक्षित रखोगे किस तरह पंथ नूं बचा के रखोगे जब बाणी तो ही टुट जाना है ते बाणी ते ही किंतु परंतु। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा इस शब्द दे च गोहज कथा है गूढ़ी कथा ते मैं हुण कबूल कर लवां उस गूढ़ी कथा दा मेरे कोल अनुभव नहीं पर मैं जो पढ़े है वह मैं थोड़े सामने खोलांगा। पहले अखरी अर्थ आप सरवण करो एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री
महल राके सुवाए
तो ही राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें गुरु नानक का यह वाक है, जिस घर दे द्वार बचे बड़े उच्चे ने, ते जो घर सुखा का घर है, जो महल सुखा का घर है, सुख महल जाके ऊच द्वारे। हां जी, उस महल दे च वसदे ने भगत जन, उस महल दे च वसदे ने प्रभु दे प्यारे भगत जन। जिहड़ा महल सुखां दा महल है, जिहदे दरवाजे बड़े उच्चे ने, बड़े उच्चे ने, ते महल भी बड़ा उच्चा है, बिल्डिंग भी बड़ी उच्ची है। हां जी, ये जो सहज कथा है, उस सुख महल दी जो कथा है, उस उच्चे द्वार दी जो कथा है, अत्यंत मिठी है, बड़ी स्वादली है, बड़ी रसदायक है, बड़ी गैर गंभीर है। हां जी, इस कथा नो किसे विरले ने इना अखां नाल देखिया होगा, वे जिस दी गल कीती जा रही है, किसे विरले ने ए आनंद माणिया होगा, जिस महल दी गल कीती जा रही है, किसे विरले ने देखे, जिस महल दी गल कीती जा रही है, किसे विरले दा वासा होया है, जने खने दा नहीं, जने खने दा नहीं, हर एक नहीं। हुण इस सहज कथा दी भगत कबीर ने जिस तरह व्याख्या कीती है, शब्द दी व्याख्या शब्द कर देन, इत्थों ही प्रमाणा दे कीर्तन दा जन्म दाता होया, वह जन्म होया और ये जन्म दिता सी भाई चांद ने। हुण ते असी बहुत तसबी हो गए, तंग दिल हो गए, दरबार साहब दे भाई चांद कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, मोती रबाबी कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई मुख्तियार कीर्तन करते रहे ने मुसलमान, भाई लाल कीर्तन करते रहे ने मुसलमान। असी कबूल किया है, असी सहन किया है, दास पिछों फ्रंटियर दे इलाके च आया, उतों आया, जिस दिन भाई चांद साडे नगर पहुंचते सन, सारा नगर कट्ठा हो जाता सी, मुसलमान भी आ जाते सन। जिथे भाई चांद प्रमाणा का कीर्तन करते सन, मुसलमान उन्होंने कहते सन, फरीद भी सुना दे जरा, इंज कहते सन, वो जरा सानू फरीद नाल भी जोड़ दे। ते भाई चांद जद फरीद की बाणी नू गायन करते सन, मुसलमान चीखा मार के रोण लग पैंदे सन, इन्ना हिरदा उन्होंने बैरागी हो जाता सन। इतने बैराग दे च भाई चांद कीर्तन करते सन, सिर्फ भाई चांद उन्होंने नाम से, सिर ते दस्तार जरूर सजांदे सन, केसादारी नहीं सन। मैं लंबे चौड़े विवाद दे च नहीं पैंदा, पर इतना मैं अर्ज करा, सन 47 तक सारे कीर्तन करते सन, ऐसे ही दरबार साहब दे च कीर्तन करते सन, सारे देश दे च कीर्तन करते सन, और असी बड़ी श्रद्धा नाल उन्होंने सुनते सी, बड़ा आनंद आउंदा सी मरदाने दी अंश। लेकिन सहजे सहजे असी तंग होंदे गए, ऐलान ते कर दे गए, दरबार साहब दे चार दरवाजे ने, चार दरवाजे ने, हिरदे दा तो एक भी खुला नहीं रहन दिता, सारे ही बंद कर दिते, किसे वास्ते साईं कोई नहीं रही, हिरदे दे बूहे ते बंद करके रख दिते, हिरदे दे दरवाजे ते उन्हां लई भी बंद कर दिते, धन गुरु नानक देव जी महाराज दी संतान बाबा श्री चंद उन्हां तो उदासियां दी संपदा चली, धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो निर्मलियां दी संपदा चली, किसी हद तक ते असी दरवाजे उन्हां लई भी बंद किए हुए, उन्हां लई भी पराग दिली ना रही, उन्हां लई भी खुल दिली ना रही। खैर, यह तेवें विचकार टूक मात्र जो है गल आ गई है। प्रमाणा दा कीर्तन इस दे जन्मदाता भाई चांद ने, इस तो पहले प्रमाणा दा कीर्तन नहीं आता, शब्द गायन आते, लेकिन जब प्रमाण दे के कीर्तन करते सन, शब्द की व्याख्या हो जाती, कुछ कहने की लोड़ नहीं होती। ऐसा भाई चांद का ढंग से, भावें अपनाया है कुछ गुरु के कीर्तनिया ने भाई चांद के ढंग, जो प्रमाणा का कीर्तन सुन दे फिर भी वो गल नहीं जो भाई चांद देख सी, पूरी उसकी श्रद्धा सी, पूरी एकाग्रता नाल उहदा गायन सी। ते मैरज करा जिस दिन पहुंचदा सी फ्रंटियर दे इलाके च, लैंदे पंजाब दे शहरां च, सारा सारा शहर इकट्ठा हो जांदा सी गुरबाणी सुननी है भाई चांद को। इस ढंग नाल गायन करदा सी जिथे खुद बाणी नाल जुड़ जांदा सी, बाकियां नूं भी जोड़दा सी। पैर मैं एक दफा फिर अर्ज करा, कोई भी धर्म उसका विकास रुक जाता है जिन्हां दे हिरदे दे द्वार तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। महल इतना उच्चा, रब का दरवाजे इतने उच्चे, ते तू ते निक्की जिहा बारी भी नहीं रहन दिती, शायद मच्छर भी ना लंघ सके, बंदा कितों लंघेगा। तू ते बंद करके रख दिता, तू ते दरवाजे बंद कर दिते। सुख महल जाके ऊच द्वारे, हमें वासे भगत प्यारे। ये जो सहज की कथा है, इसनों खोलते ने भगत कबीर। सारे शब्द सहज की कथा है, ते सहज की कथा नू कह रहे ने गोज कथा। इस गोज कथा नू कबीर इंज बयान करते ने, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। ये जो सहज की कथा है, कबीर कहते मैं किसी नाल तुलना भी नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, तुलनात्मक ढंग नाल मैं बयान नहीं कर सकता, छोटा भी नहीं कह सकता, वड्डा भी नहीं कह सकता, वो खेड ही कुछ और है। तो फिर किवें समझिए, फिर किवें समझिए सहज की कथा की है, जिसनों सहज प्राप्त हो जाती है। सहज सुभा है, होए सो होए, करने हार पछाणे सोए। सहज दे अखरी अर्थ ने स्वयं तो जन्मया। मैनू प्यास लगी है, मैं पानी पी रहा, ये सहज है। मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा, ये सहज है। पर मैनू भुख नहीं लगी ते मैं खा रहा, ये खाना सहज नहीं है। नहीं, क्योंकि अंदरों भुख तो पैदा ही नहीं। मैनू प्यास ते लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, ते मैं पानी पी रहा, ये पीना सहज नहीं है। अंदर ते कोई चाओ मलार नहीं है, ते मैं आ गया कीर्तन सुनन, कथा सुनन, ये कीर्तन सुनना सहज नहीं है, ये कथा सुननी सहज नहीं है। अंदर कोई उमंग तरंग ते तड़प नहीं है, मैं बाणी पढ़ रहा, ये बाणी जपना सहज नहीं है, ये कीर्तन करना भी सहज नहीं है। कीर्तन करने की कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई खिच नहीं, अंदर कोई कशिश ते तड़प नहीं, ये कीर्तन सहज नहीं है, कथा सहज नहीं है, ये पाठ सहज नहीं है, ये गुरुद्वारे जाना सहज नहीं है, ये तीर्थां ते जाना सहज नहीं है। रोम रोम त्रिहाया है, ते रोम रोम पानी मंगदा है, ते बंदा पानी पी रहा, पानी सहज है। बड़ा गहरा वैराग है, प्रभ दे मिलन दी चाह है, रसना वाहेगुरु वाहेगुरु जप रही है, ये जपना सहज है। ये अंदरों पैदा हुआ है, ये स्वयं तो जन्मे है। किसे दा पाठ सहज होवे, किसे दा कीर्तन सहज होवे, किसे दी कथा सहज होवे, किसी का सतगुरु दे कोल आना सहज होवे, सत्संग देच आना सहज होवे, दान करना सहज होवे, पुन करना सहज होवे, सेवा करनी सहज होवे। मैं अर्ज करा करोड़ों च कोई कद होंदा, बाकी असहज ही कर देन। सहज तो है नहीं, दान भी करी जाते, पुन भी करी जाते, कीर्तन भी करी जाते, कथा भी करी जाते, सुनी भी जाते, भज दौड़ बड़ी है, सहज नहीं है। अंदरों प्यास नहीं जागी, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं अंदरों प्यास नहीं जागी तो हुण जाना ही नहीं चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहता। करना है तो जाना है, मता किसी दिन सहज की प्राप्ति हो जाए, इस करके किसी दिन सहज मिल जाए। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी। मैं किसे नाल तुलनात्मक गल नहीं कर सकता, कबीर कहंदे ने सहज दी कथा, कंपेयर नहीं कर सकता। मैं किसे तो छोटा वड्डा भी इस ढंग नाल भी बयान करना मेरे लिए कठिन है, तो फिर किवें समझिए सहज नूं, किवें समझिए। चलो कुछ इशारे ही सही है, जैसे चंद्रमा दी तरफ उंगल नाल इशारा कीता, ये ठीक है उंगल चंद्रमा नहीं है पर इशारा ते कीता जा सकता है। इशारा ते कोई उंगल नूं पकड़ लवे ते चंद्रमा ते नहीं पहुंच गया, उंगल नूं पकड़न नाल चंद्रमा नहीं पकड़िया गया, उंगल हाथ दे च आ गई ते चंद्रमा हाथ दे च नहीं आया। अगर कोई इस तरह समझ बैठा है तो बहुत वड्डा भुलेख है, बहुत वड्डा भुलेख। मैं देखना जिन्ना जिन्ना लोगों ने चंद्रमा की तरफ इशारे किए ने, लोग उन्होंने मथा टेकन लग पेंदे ने, पूजन लग पेंदे ने, पर जिदी तरफ इशारा किया है उदी तरफ अख उठा के देखते ही नहीं, उदी तरफ वेखते ही नहीं। जिदी तरफ उंगल नाल इशारा किया जा रहा है उन्हों वेखो, उसनों वेखो। ते जिसने उंगल नाल इशारा किया है, चलो धन्यवाद सही उसका, सानू एक मौका दिता है नजरां उच्चियां करन दा, देख लईए उपर चंद्रमा, ओ वेखो। इशारे किए जा सकते ने, तो लगता है अगलिया ने जरूर पूछया कबीर कोई इशारिया च ही गल कर, वो जड़ी सहज की कथा है ओदे च की है। हुण कबीर कहिंदे ने ओदे च की है, ये बयान तो परे है, ये मैं नहीं बयान कर सकता। तो फिर किवें समझांगे, कबीर कहिंदे ने मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है, ये कह सकदा। जिहड़े तुहाडे विच कोई थोड़ा बहुत अभ्यास करदे होणगे जरूर गल नूं पकड़नगे, उत्थे की है वो मैं बोलां च बयान नहीं कर सकदा, उत्थे की है मैं उहदी व्याख्या नहीं कर सकदा। हां मैं ये बयान कर सकदा उत्थे की नहीं है। तो चलो दसो वो जिहड़ी सहज अवस्था है जिथे मनुख पहुंचदा है उत्थे की नहीं है। हुण की नहीं है कबीर जो कुछ दसदे ने ध्यान नाल सुनना, कहें पावस सिंध धूप नहीं छैया, कहें उत्पत परलो नाहीं, जीवन मृत न दुख सुख व्यापे सुन समाद दो ते नाहीं। सारे शब्द विच कहणगे ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, उत्थे ए भी नहीं है। पावस बरखा दा राजा सनातन मत विच इंद्र नूं मंदे ने, मेरी सहज दी दुनिया विच इंद्र नहीं है, उहदी कोई वैल्यू ही नहीं है, इंद्र दी कोई होंद नहीं, इंद्र दी कोई मनोत नहीं है, इंद्र दी कोई महानता नहीं है। सुनदे जाना हुण कबीर नूं, तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, कहिंदे ने विष्णु खीर सागर दे शेषनाग दी सिरजा ते बैठा है। कबीर कहिंदे मेरी दुनिया च ए भी नहीं है, सहज दे च ए भी नहीं, ए भी नहीं। धूप नहीं छैया, उत्थे सूरज भी नहीं है, उत्थे चंद्रमा भी नहीं है जो शीतलता देंदा छां देंदा, ते उत्पत परलो नाहीं, उत्थे उत्पत्ति करन वाला ब्रह्मा नहीं है, उत्थे परले करन वाला शिवजी नहीं है, उत्थे परले शिवजी करदा है ये गल नहीं है, उत्थे उत्पत्ति ब्रह्मा करदा है ए गल नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। उथे बरखा इंद्र करता है ये गल नहीं है, एवें धारनावां ने मनोता ने ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਪਾਵਸ ਸਿੰਧ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਛਈਆ, ਤੈ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਨਾਹੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪੇ, ਸੁਨ ਸਮਾ ਦੋ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚ, ਬੈਠਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਸਿਵਾਏ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭੈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ, ਕਲ, ਕਲੇਸ਼, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਤਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ ਕਿ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਤ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਉ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਰੀ, ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਬੁਕਾਤੀ, ਹਲਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਉ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਨਹੀਂ। ਵਾਂ ਸਮ ਠਾਕਰ ਸਮ ਚੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਠਾਕਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਵਾਂ ਸਮ ਠਾਕਰ ਸਮ ਚੇਰਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ? यदि समझ महान होवेगी फौज दे करनल जनरल बन जाएगा, बाकी विचारे सिपाही रह जाएंगे। यदि समझ महान होवेगी फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगा, बाकी विचारे लेबर। चलो धन ते बराबर हो गया, ये बाकी बराबरी करे, यदि सारे नु मैनेजर बनाओ या सारे ही लेबर, या सारे नु करनल जनरल बनाओ या सारे ही सिपाही, फिर कहें काम नहीं चलता। इन्हों कौन दसे निर्धन ते धनवान होए बिना भी काम नहीं चलता, कौन दसे। वह समठा कर समचेरा, एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। धन गुरु रामदास जी महाराज, अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिनस तै नाही। रात ते दिन दा जिक्र करन दा कबीर दा मतलब उथे समा नहीं है, वक्त नहीं है। मैं कई दफा अर्ज कीता है, दुख दे समा लंबा हो जांदा है, सुख दे समा छोटा हो जांदा है, परम आनंद दे समा खो जांदा है, समाप्त हो जांदा है, नहीं रहिंदा, समाधि दे समा नहीं होता। कबीर कहिंदे ने उत्थे दिन ते रात नहीं है, क्योंकि समय दी पहचान दिन ते रात करके आउंदी है। अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिनस तै नाही। उत्थे ए रात दा सोना नहीं है, दिन दी भटकना भी नहीं है। इसनों इस तरह भी ले लो, समय दा प्रभाव नहीं है। उत्थे मनुख दिन ते रात दे प्रभाव हेठ नहीं जीवदा, निकल गया समय दा, अकाल दी दुनिया च पहुंच गया। सारे शब्द विच कबीर कहिंदे ने ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है। ऐसा क्यों कह देता है? अकथ सहज की अकथ कथा है निरारी, जो उथे है उथे अकथ है, ते जो नहीं है वो कह देने या दस देने, ऐ ऐ नहीं है। जो उथे है वो अकथ है, नहीं कह सकते। ते जिहड़े तार्किक लोग ने वो कहने ने जो कहा नहीं जा सकता, जो वेख्या नहीं जा सकता, असी मनते ही नहीं, गल खत्म, असी मनते ही नहीं। थोड़े दिन होए मैं एक दिन नाल सिर बड़ा खपाया, बहुत खपाया, टकर गया, कदी कदी इस तरह के टकर पैंदे। ते मैं भी हुण उस तो जान छुड़ाण वाला सी, कुदरती गल है, उन्हें आप ही कह दिता, गहने जी थोड़े नाल मत्था मार दिया ते मेरा सिर दुखण लग पे। सिर मैं कहे इस तरह फिर अज शर्त लाने, तू मैनु सिर दा दर्द दिखा दे, मैं तेनु रब दिखा देना। मैं अज तक नहीं वेख्या सिर दा दर्द लाल होंदा है, पीला होंदा है, हरा होंदा है कि चिट्टा होंदा है, तू ए दिखा दे सिर दे चों कढ़ के, ते मैं तेनु जीवन दे चों कढ़ के परमात्मा दिखा देंगा। कहण के सिर दा दर्द भी कोई दिखाया जा सकता है, ते मैं तेनु किस मूर्ख ने कह दिता रब दिखाया जा सकता है, तेनु किस ने कह दिता। जिमें दर्द तेनू महसूस होंदा है शरीर दे अंदर, तिवें रोम रोम दे च परमात्मा महसूस होंदा है, अनुभव होंदा है, उसका अनुभव होंदा है। अजे तेरी चेतना इतनी जागी है, सिर दा दर्द ते महसूस कर दी है, सिर दे जो महा आनंद है उसनों महसूस नहीं करती। उहदे लई ते कुछ यतन करना पएगा। वो जिहड़ा यतन है मैं उसका भी जिक्र करा, ठीक है। एक दो चिट्ठा आईया ने कि तुसी समा खुला ला लेना, दिवाली है, छुट्टी है, बाहर रस्ते भी बंद ने, जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। अज किधरे कनेडा के प्रधान जो है प्रेजिडेंट ने आना है, कहिंदे रस्ते सारे ही बंद कर रखे है, थोड़े जिहा मिनट। सिर दे च जो आनंद है उसका नहीं पता चलेगा। सहस्त्रदार हजारा पंखड़िया वाला कमल ऐसे सिर देश कहते हैं, इतने ही कहते हैं। ना देखिया ना उसकी महक माणी, ना उसका स्वप्न, ना उसका रस, ना उसका आनंद। क्यों? जिसने आनंद माणना है, जिस जीवन शक्ति ने जो साढ़े अंदर है, ਉਹ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਭੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜੇ ਨੂੰ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ, ਛੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੂਖ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰ, ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਛੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਛੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਕੋਠੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਅਤਿ ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ, ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਕੁਲਫ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਪਲੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਫ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਚ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਦੇ ਚ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇਧਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਕੁਲਫ ਖੋਲਦੇ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੀ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਰਥ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਸੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੁੰਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਲਫ ਨੇ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਚੋਰ ਮੁਸੇ ਘਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਾਗ, ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ जो हर दफा प्रभु तेनु अनुपम वस्तु देंदा रहे देंदा रहे पर चौंके तो सुता रहे उस अनुपम वस्तु दा पता तेनु ना चले। जीवन दी ओजड़ी प्रबल शक्ति है कहने नाभि तो थले कुंडल मार के सुती पई है। उन्हों भट जिस ढंग नाल बयान करते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मैं छेती छेती ओ अर्ज करा पट कहते ने कुंडल नहीं सुरजी सतसंगत। आम लोकी कहते ने गुरु ग्रंथ साहब दे बस एवं थोड़ी जी मोटिया मोटिया गल्ला ने जद भी मैनु ऐसा कुछ कहता है मैं सिर्फ दो चार शब्द ही उदे सामने रख देना भी यही खोल के दस दे तू मैनु अजे तक मैनू नहीं समझ पई तू खोल के दस दे फिर दंग रह जाते ने कहने योजिया दिया गल्ला ने ते मैं कह तू फिर की समझे। बिना देखे मनुख फैसला कर देंदा बिना पढ़िया बिना सोचिया ते कमजोरी साड़ी भी असी इस महान सागर नू जगत दे सामने नहीं रख सके नहीं सक जितने साधन साढ़े कोल ने जगत दे सामने रखण दे इतने सागर साधन रूहे जमीन दे किसे कौम कोल नहीं ने ते जितनी ए कौम साधना दा दुरुपयोग या उपयोग ही ना करना ए कौम कर रही है कोई कौम नहीं कर दी ते मनना पैणगा। इस वास्ते सिखां दे चों वी नास्तक पैदा हो जाणगे किंतु परंतु करण वाले गए ही नहीं बाणी दी तह दे च गए ही नहीं। कुंडलनी सुरजी भट कहिंदे ने साडी कुंडलनी जाग पई सुरजी जाग पई परमानंद गुरुमुख मचा किवें जाग पई गुरुमुख बन गए गुरु दे सामने गए गुरु दे बचन दोहराए गुरु दा जप कीता कुंडलनी जाग पई ओ शक्ति कुंडल मार के सुती हुई है कुंडलनी। इसनों कईयां ने पिटोरी दे च पई हुई सपने नाल भी तशबीह दित्ती है सर्प ने एवें कुंडल मार के सपनी बैठी होंदी है सिर तले डाके ये शक्ति कुंडल मार के बैठी है और मोह थल्ले प्रवाह थल्ले। इस वास्ते कहिंदे ने जैसे जैसे मनुख धनवान होंदा जांदा है गुस्ताखी माफ उदी काम वासना वद्दी जांदी वद्दी जांदी फिर वो चार चार सौ महाराणियां रख लेगा फिर वो छे छे सौ बेगमां रख लेगा। अज मराको दे शहन शादियां 1000 बेगमां ने और दुराचार बलात्कार किसनों कहते ने पैसे ने इतना काम ही बना दिता। अज संसार दे धन वधे है तो अमेरिका सब तो काम ही देश हो गए ये देश भी होंदा जा रहा है। जैसे जैसे पैसा वधदा जा रहा है पैसे वालियां दे बच्चे खरमस्तियां करन लग पैन दुनिया भर का अनर्थ करन लग पैना है। ये गल वखरे ने कि अपनी ताकत नाल अपनी समर्था नाल उन्हां दियां खरमस्तियां नूं दबा देंदे ने छुपा देंदे ने पर ना बड़ा अनर्थ करन लग पैना। ताकत दे वध्यां धन दे वध्यां ये वध जांदे ये बाहर दी ताकत ते वध गई ते बाहर मुखी मनुख नूं बना दिता। एक परम शक्ति कुंडल मार के अंदर बैठी है मुखड़ा थले कीता है उदे बहाव नूं थले दी तरफ बाहर दियां शक्तियां प्रेरित कर दियां। सता मिल गई है तो कामी दुराचारी हो ही जाएगा। बड़ा धन मिल गया साजो समान मिल गया केवल धन वद्दा जा रहा है तो महज कामनावां वद्दियां जान गया वासना वद्दी जाएगी। अगर मन जप रसना ने करना है ते मन ने सुनना है गावीए सुनिए मन रखिए। जैसे मूलाधार चक्र नो विन के ओ सुरत उच्ची उठी ओ शक्ति उच्ची उठी ऐसे मनुख दा वासना दा जगत समाप्त हो जाता है। ऐसे मनुख वरना नहीं होवेगा मरदे दम तक वासना रहेगी, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, वासना सदा जवान रहती है और फिर अगला जन्म करा देती है। अगों मां बाप की वासना तो उस मरे हुए की वासना तिना का संगम होके फिर जन्म हो जाता है। शरीर बुढ़ा होता है, वासना नहीं बुढ़ी होती, शरीर मरता है, वासना नहीं मरती। तो जे शरीर के मरण वाली वासना मर गई फिर तो जीवन मुक्त हो गए, चले गए परमात्मा दे देश गल खत्म, नहीं मर गई। एकाग्रता बख्शने वासना का जगत खत्म हो गया, क्यों सुरत उच्ची उठ गई है, मूलाधार तो उच्ची उठ गई है। ये छे चक्कर अंदर मनते हैं, फिर इन्हों छे चक्करों जो विन के उपर उठ जाता है, सहस्त्रधार हजारा पंखड़िया वाला कमल, फिर उसके रस का, उसके स्वपन का, उसकी महक का वो आनंद माणदा, फिर प्रभु दी देश दे वस जाता है। अगर जप जारी है, जारी है। दूजा चक्कर है सब देष्टान, इनू विन के जब सुरत उपर उठ गई, कुंडलनी उपर उठ गई, मन उपर उठ गया, सुरत उच्ची हो गई, ऐसे मनुख के अंदर मौत का भय समाप्त हो जाता है, मौत का भय नहीं रहता, नहीं रहता। ऐसा मनुख किसी कीमत पे भी मौत तो नहीं डरेगा, उन्हों एक समझ आ जाती है, समा अस्थान ते कारण ये तिने कठे ना होवन मौत नहीं आती, नहीं ते मरना वो कबूल कर लेंदा है, मरना वो मन लेंदा है, होना है, होना है, इसने होना है। पर सिर्फ वासना का जगत खत्म होया है, सिर्फ मौत का भय खत्म होया है, परम आनंद, परम रस, परम महक, परम सुहप्पण अजे नहीं प्रगट हो, अजे नहीं प्रगट होया। मैं छेती छेती व्याख्या कर रहा, जप जारी है, वाहेगुरु वाहेगुरु का जप जारी है, इसे ही जप नाल सुरत उच्ची उठेगी, और कोई साधन नहीं है। इस वास्ते महाराज कहते हैं, जो जप नहीं करता तो बाकी सब कुछ कर रहा है, जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, जप तो बिना सारे कम निष्फल समझ ले, लाड़े तो बिना बरात की मायने रखती है, की मायने रखती है, जप नाल ही सफलता है। पहली बाणी का नाम जप है, दसम ग्रंथ की पहली बाणी का नाम जप है, जप की सारी महिमा बयान है। कि चलो बाबा जी को ये पूछ ली किवें जप करिए, तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। अठ दस दे करीब प्रचारक विचारक जो अपने आप नूं कहिंदे ने, बड़ा दार्शनिक कहिंदे ने, यही प्रचार कर रहे हैं, तोते की तरह रट के वाहगुरु वाहगुरु ये नाल की होना है, ये ना करो, छुड़ा रहे ने। कलकत्ते च देख के मैं दंग रह गया, न्यूयॉर्क दे च मैं देख के दंग रह गया, और जेडे जेडे अपने आप नूं बुद्धिजीवी कहिंदे पैने वह भी यही कह रहे हैं, जप तो हीणा मनुख ते फिर पशु समान ही रह जाएगा। जप नहीं तो इसके अंदर शक्तियां जगानियां, जप नहीं तो इसनों महान बनाना है, तो जप ही कर दिता तो फिर रह की गया। ये तो कौम की जिंद जान ही कट रहे हैं, ये तो सिखी की जिंद जान कट रहे हैं। कौम नूं सुचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। जप की गल सब तो पहले, और मैं फिर दोहरा दिया, बाणी दे जप नाल जो जुड़े होया, दुनिया की कोई ताकत उसके बाणे नूं उतार नहीं सकती। गुरु ग्रंथ साहब नाल जो जुड़े होया है, कभी वह पंथ दे टुकड़े नहीं करेगा, कभी पंथ तो निकलेगा भी नहीं, नाल चलेगा, नाल चलेगा। पर बदकिस्मती है, गुरु ग्रंथ की महानता की भी वही गल करते हैं जो गुरु ग्रंथ नाल जुड़े नहीं, कई दफा बाणी की भी गल वही करते हैं जिन्हों का बाणी दे नाल दूर का भी कोई वास्ता नहीं। जप जारी है, सुरत होर उपर उठी है, तीजा चक्कर है मणिपुर, उस चक्कर नो विन के ए जद कुंडलनी ए जद शक्ति उपर उठती है विचारां दा व्यर्थ दे पुरनियां दा जगत समाप्त हो जांदा है। ऐसा मनुख जद सत्संग दे च बैठा है कीर्तन सुन रहा है तो कीर्तन ही सुन रहा है व्यर्थ दे पुरने नहीं। ऐसा मनुख जद पाठ कर रहा है तो पाठ ही कर रहा है व्यर्थ दे पुरने नहीं। ऐसा मनुख जद कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन ही कर रहा है उसके अंदर कीर्तन दी ही विचारधारा चलेगी व्यर्थ दे पुरने नहीं। लेकिन हर वक्त दो दो काम मनुख करता पे आंदा है पाठ भी करता पे आंदा है अंदर व्यर्थ दे पुरने भी चल रहे। सुरत होर उपर उठी है मणिपुर चक्कर नो विन के उपर उठी है व्यर्थ दे फुरनिया दा जगत समाप्त हो गया। व्यर्थ दे फुरने उस दे अंदर नहीं रहंदे। जायज फुरने जायज विचारधारा ते चल दिए जिहड़ी लोड़ है व्यर्थ नहीं फिजूल नहीं। जिवें सड़क दे उत्ते बहुत सारे बंदे जा रहे हैं बहुत सारे भई कई दफा असी उस दे नाल चल पैंदे हां जो साडा प्यार है जो साडा अपना है उस नाल चल पैंदे हां और भी हजारां लंघदे पैन लंघन पे देखे जांदे हजारां तरह दे विचार मनुख दे अंदर चलदे ने और हर वक्त इस सड़क ते भीड़ रहिंदी है। सियाणा मनुख सुचेत मनुख जो मणिपुर नूं के उपर उठे है वो उसे ही विचार नाल चलदा है जिहड़ा निरंकार तक पहुंचावे बाकी नाल नहीं चलदा। बाकी विचारां नूं कहिंदा है जाओ तुसी लंघो मैं थानू देखण वाला थोड़े नाल नहीं चला। मनुख विचारां दे नाल चलदे ने पाठ ते रही जांदा है मनुख फुरनियां दे नाल चलदे ने कौन कीर्तन सुने हुण मुहरनिया दे नाल बड़ी दूर चले जांदे ने बैठे भावें सत्संग दे चाहुंदे ने बड़ी दूर चले जांदे कौन सुने कीर्तन कथक। ऐसा मनुख उस विचार नाल चलदा है जो निरंकार दे देश दी तरफ लै जांदा है। बाकी विचारां नूं देखण वाला उह बन जांदा है विचारां दे नाल नहीं चलदा पुरनियां दे नाल नहीं चलदा व्यर्थ दे ख्यालां दे नाल नहीं चलदा। ये उस मनुख की अवस्था है जिसने तीजे चक्र नो विन के बुलंदी हासिल कर ली है। इसे नु कहंदे ने इह ते हुण उच्चा मनुख है उच्चा शरीर करके नहीं सुरत करके उच्चा तन करके नहीं समझ करके उच्चा धन करके भी नहीं रुतबे करके भी नहीं आत्मक आनंद करके। ये भी मैं अर्ज कर दें किसे जमाने च मनुख दी उचताई नापी जांदी सी इहदे च दया कितनी है ज्ञान कितना है ये समदृष्ट कितना है ये प्रेम दा सागर कितना है ये नाप तोल होंदे सन मनुख नूं महान मनण दे। ये पैमाने अज नहीं रहे अज पैमाने की ने इहदे कोल धन कितना है इहदे कोल संपदा कितनी है इहदे कोल रुतबा कितना है अज ये पैमाने रहे। संतां नूं भी जद कतारां च बिठाया जांदा है ते कहिंदे ने वड्डा संत छोटा संत हुण वड्डा संत छोटा संत किस ढंग नाल नापे है इहदा डेरा वड्डा है इहदी धन संपदा ज्यादा है इहदे चेले चाटे ज्यादा ने इह ते वड्याई। पैमाने जे जिन्हां नाल असीं संसारी मनुख नूं नापदे हां उन्हां ही पैमानियां नाल असीं संत नूं नापदे हां तो प्रभावित असीं धन तों हां कोई संत तों नहीं हां। ये भी मैं अर्ज करते हैं प्रभावित उसके डेरे तो हां उदियां कारां तो हां उदे चेले चांटियां तो हां उदी भीड़ तो हां संत तो प्रभावित नहीं है। खैर जप जारी है सुरत होर उपर उठे चौथा चक्कर है अनाहत। बड़े ध्यान नाल सुनना इसनों विन के जैसे सुरत उपर उठती है कुंडलनी उपर उठती है ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है परमात्मा दा बोल सुनदा है जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है। उस अनाहद दे च सारे साजां दी आवाज आउंदी है उस साजां दी आवाज दे नाल गीत आउंदा है संगीत आउंदा है